पृष्ठ संख्या 274, अध्याय 8, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व से तात्पर्य केवल व्यक्ति के बाह्य शरीर रचना अथवा वाणी या वस्त्रों से संबंधित नहीं है, अपितु इसका संबंध व्यक्ति के समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, चारित्रिक, खेल आदि के समुचित विकास से है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के गुणशीलों की संज्ञा दी है। व्यक्ति के शील गुणों के अंतर्गत संवेगात्मकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, प्रभुत्व, ईमानदारी, सहिष्णुता, सत्यवादिता, त्याग, बलिदान, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, सहयोग, कर्मठता आदि आते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण विशेषता है, जिसका प्रदर्शन उसके विचारों, आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों, व्यवहारों, अभिव्यक्ति के ढंग, कार्य करने के ढंग आदि के द्वारा होता है। संक्षेप में व्यक्तित्व विकास व्यक्ति की रुचियों, आदतों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं, इच्छाओं, भावों, चारित्रिक गुणों, बौद्धिक क्षमताओं, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक गुणों, व्यवहार शैलियों, सामाजिक मूल्यों आदि का अनूठा संगम है, जिसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एवं निर्माण होता है। सारांश में व्यक्तित्व के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में नाटक के पात्र कलाकार अपने विशेष रूप व वेश बदलने में किया करते थे। प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, जहाँ बाह्य रूप से तात्पर्य व्यक्ति की शरीर रचना, गठन, शक्ल सूरत, वेशभूषा, त्वचा का रंग आदि से है। अर्थात जो व्यक्ति इन बाह्य गुणों एवं सुंदर वस्त्रों से दूसरों को आकर्षित कर लेता था, उसका व्यक्तित्व विकास उतना ही अच्छा एवं मोहक माना जाता था। परंतु रोमन काल में व्यक्तित्व की परिभाषा बदल गई है और कुछ विशिष्ट गुणों से परिपूरित व्यक्ति को ही पर्सोना कहा जाने लगा है। सारांश में व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के वे सभी आंतरिक एवं बाह्य गुण आ जाते हैं जो उसके संपूर्ण व्यवहार प्रणाली की ओर संकेत करते हैं। सरल शब्दों में व्यक्तित्व विकास का वातावरण से अनुकूलतम एवं सामंजस्य बिठाने का ढंग है। यथार्थ में वह व्यक्ति के शील गुणों का ऐसा सुसंगठित एवं समन्वित योग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की ओर इंगित करता है। पर्सनालिटी इज नॉट वन डिफिनिट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ पर्सन टोटल बिहेवियर। पृष्ठ संख्या 275, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व एक व्यापक एवं ग्राह्य अवधारणा है। सच तो यह है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में शायद ही दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अगणित रूपों व विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया हो। इतना ही कि व्यक्तित्व विकास को कारण है व्यक्तित्व के संबंध में विद्वत जनों में मतैक्य का अभाव। विभिन्न विद्वानों ने व्यक्तित्व की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, आलपोर्ट के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का वहन गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अनूठे अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। नंबर दो, वैलेंटाइन के अनुसार, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। नंबर तीन, एम एन मन के अनुसार, व्यक्तित्व की परिभाषा उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में की जा सकती है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के गुण, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताएं, योग्यताएं आदि सम्मिलित हैं। नंबर चार, विशंस एवं विशंस के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और विलक्षणताओं का वह संगठन है जो जैविकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की संयुक्त क्रियाओं से उत्पन्न होता है। नंबर 5, वारेन के शब्दों में, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। नंबर 6, कैंप ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है, व्यक्तित्व आदत की उन अवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 7, पाल समन 1969 के शब्दों में, व्यक्ति की विभिन्न वैयक्तिक विशेषताओं, संवेगों, प्रेरणाओं, मूल्यों, लक्ष्यों तथा उन्हें ग्रहण करने की शैली आदि सभी पक्षों में व्यक्तित्व की संरचना होती है। नंबर 8, रास स्टेगनर 1961 के अनुसार, व्यक्तित्व व्यवहारों के प्रति उनकी निजी प्रवृत्ति तथा स्थान एवं वातावरण के प्रति उनका असाधारण अनुकूलन ही व्यक्तित्व है। नंबर 9, ए टी जर्सफील्ड के अनुसार, व्यक्तित्व के रूप में उसके लक्षणों, गुणों तथा योग्यताओं का योग ही व्यक्तित्व है, जिसमें उनकी समायोजन स्थापित करने की जीवन शैली भी समाहित है। नंबर 10, मार्टन के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का संगठन है। पृष्ठ संख्या 276। नंबर 11, रैक्स रॉक के शब्दों में, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। नंबर 12, म्यूरहेड के अनुसार, व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति समाहित रहता है, यह व्यक्ति के शारीरिक संगठन, रुचि के प्रकारों, अभिवृत्तियों, व्यवहार क्षमताओं, योग्यताओं तथा प्रवणताओं का अद्भुत संगठन है। नंबर 13, एच के आइजनेक के अनुसार, व्यक्ति की अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थाओं का व्यक्तित्व सापेक्ष रूप से वह संगठन है जिसकी उत्पत्ति जैविक अंतर्नादों, सामाजिक व भौतिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होती है। अतः उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर समाहित विभिन्न शूल गुणों का अद्भुत समन्वय व अपूर्व संगठन है जिसके आधार पर वह वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं में से सबसे उपयुक्त, श्रेष्ठ एवं मान्य परिभाषा आलपोर्ट की है, जिन्होंने कम से कम शब्दों में व्यक्तित्व के विभिन्न डायमेंशंस को स्पष्ट किया है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का वह संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अभूतपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्तित्व प्रतिमान। प्रतिमान पैटर्न का सामान्य अर्थ होता है डिजाइन, ढांचा, व्यवस्था या वानगी। पैटर्न मीन्स आ डिजाइन आर कॉन्फिगरेशन। व्यक्तित्व प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य दो घटक कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1, आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वह व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग होता है। नंबर 2, व्यक्तित्व के शैल गुण, ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, यह घटक पहिए की तीली की भांति होता है। पहिए का केंद्रीय भाग तथा उसकी तीलियां आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं और चक्के अथवा पहिए को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, फलतः गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार आत्म प्रत्यय भी व्यक्तित्व का मुख्य भाग है तथा व्यक्तित्व के शैल गुण उसकी तीलियों की तरह हैं और ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से अंतः संबंधित एवं गुथे हुए होते हैं कि जीवन की गाड़ी निरंतर व निर्बाध रूप से चलती रहती है। आत्म प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट भी दो प्रकार का होता है। रोमन का 1, वास्तविक आत्म प्रत्यय, रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, यह वह प्रत्यय है जो व्यक्ति अपने संबंध में निर्मित करता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आदि आदि। यह एक प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब है जो उसकी भूमिकाओं को विस्तृत रूप से निर्धारित करता है। इस आत्म प्रत्यय का निर्धारण मुख्यतः बालक दो रूपों से दूसरों के साथ संबंधों को बनाने में एवं उसके कार्यों एवं व्यवहारों को निर्देशित करने में काम आता है। यह उसके विश्वासों से भी प्रभावित होता है जो उसमें दूसरों के साथ प्रतिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। रोमन का 2, आत्म प्रत्यय, आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, यह स्वयं के संबंध में वह तस्वीर है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि वह क्या बनना चाहता है। द आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द पिक्चर पीपल होल्ड ऑफ व्हाट दे वुड लाइक टू बी। व्यक्तित्व प्रतिमान के संगठन में आत्म प्रत्यय की स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी बालक का व्यक्तित्व प्रतिमान किसी सीमा तक और कितनी मात्रा में होगा, इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि बालक के आत्म प्रत्यय में कितनी स्थिरता है। व्यक्तित्व संगठन में अस्थिरता मुख्यतः दो कारणों से उत्पन्न होती है। रोमन का एक, अस्थिर आत्म प्रत्यय के कारण, ड्यू टू इंस्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट। रोमन का दो, आत्म प्रत्यय में परस्पर विरोध होने पर, कॉन्फ्लिक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। यह तब उत्पन्न होता है जब बालक के साथ भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे माता पिता बालकों के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, यहीं उसके संगी साथी का व्यवहार उसके प्रति भिन्न होता है। अतः बालक में असमंजस कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिरकार वह क्या है, वह कौन है जिससे विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। माता पिता जहाँ उसे छोटा बालक समझकर प्रेमपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं, वहीं उसके संगी साथी उसे अपना हीरो मानते हैं और उनका कहना मानते हैं। घर में जहाँ लोग बालकों की तरह अनुशासित होकर काम करना पड़ता है, वहीं वह अपने दोस्तों में नेता की तरह काम करता है और उसके साथी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न बालकों के मस्तिष्क में हिलोरें लेता रहता है और इस कारण वह स्थिर आत्म प्रत्यय का निर्माण नहीं कर पाता है। इंस्टेबिलिटी मे ऑकर व्हेन देयर इज मार्क्ड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन चिल्ड्रंस रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड देयर आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। बालक जो स्वयं के बारे में सोचता है, वही चीज यदि दूसरे बालक के बारे में सोचते हैं, तब तो कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता है। परंतु जब बालक अपने बारे में सोचता है, दूसरे लोग उससे भिन्न उसके बारे में सोचते हैं, तब बालक में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और उसका आत्म प्रत्यय का निर्माण हो जाता है। द वेज चिल्ड्रन आर ट्रीटेड बाई सिग्निफिकेंट पीपल इन दियर लाइफ। नंबर दो, व्यक्तित्व के शैल गुण, ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के शैल गुणों को व्यक्तित्व की विलक्षणताएं या लक्षण भी कहा जाता है। व्यक्तित्व शैल गुण व्यक्ति के व्यवहार के वे विशिष्ट गुण होते हैं जो आपस में अंतः संबंधित होते हैं और आत्म प्रत्यय से प्रभावित होते हैं। क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार लक्षण व्यक्ति की एक अस्थायी विशेषता है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं में लगभग एक सा व्यवहार होता है। कुछ व्यक्तित्व तो लक्षण जहाँ एक दूसरे से समन्वित एवं अंतः संबंधित होते हैं, वहीं कुछ लक्षण एक दूसरे से भिन्न एवं अस्पष्ट होते हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि जब बालक में आत्म प्रत्यय धनात्मक होता है, तब उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, सेल्फ इस्टीम, स्वयं को वास्तविक रूप से देखने की योग्यता, एबिलिटी टू सी देमसेल्व्स, रिलेटिविटी आदि लक्षणों का विकास होता है। फलतः बालक दूसरों के साथ अपने संबंधों का सही मूल्यांकन कर सकता है और अच्छा सामाजिक समायोजन स्थापित कर सकता है। परंतु इसके ठीक विपरीत, यदि बालक का आत्म प्रत्यय ऋणात्मक होता है, तो बालकों में हीन भावना, कुंठा, अनुपयुक्तता का भाव, फीलिंग्स ऑफ इन एडुकेशी, अनिश्चितता की भावना, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी आदि लक्षणों का विकास हो जाता है। फलतः उसमें आत्मविश्वास में भारी कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप उसका व्यक्तित्व एवं पारिवारिक समायोजन क्षीण, दुर्बल एवं सुखदायक नहीं होता है। पृष्ठ संख्या 278, व्यक्तित्व प्रतिमान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पैटर्न। पहले यह समझा जाता था कि व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व प्रतिमान वंशानुक्रम का ही उपज है, जिसका निर्धारण माता के गर्भ में ही हो जाता है। अर्थात बालक का व्यक्तित्व ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि उसके माता पिता का व्यक्तित्व है। अतः यह तो पुराने गुटकों का ही एक गुटका है। पर्सनलिटी पैटर्न वाज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड द चाइल्ड वाज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड द चाइल्ड वाज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। परंतु वर्तमान में इस धारणा को पूरी तरह से नकार दिया गया है। व्यक्तित्व प्रतिमान केवल वंशानुक्रम की ही देन है, बल्कि वातावरण भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्सनालिटी पैटर्न इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉम्पसन का विचार है कि व्यक्तित्व का निर्माण वातावरण एवं स्वभाव दशा के सतत तालमेल के कारण होता है। पर्सनालिटी शेप्ड बाय द कॉन्स्टेंट इंटरप्ले ऑफ टेम्परामेंट एंड एनवायरनमेंट। यदि व्यक्ति के स्वभाव एवं वातावरण में सुंदर तालमेल नहीं होता, अच्छा सामंजस्य नहीं होता, तब बालक के सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, इन दोनों कारकों टेम्परामेंट एंड एनवायरनमेंट में आपसी तालमेल के अभाव के कारण बालक में कई प्रकार के व्यवहारात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्तित्व प्रतिमान में किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है, जिसके विकास में प्रमुख रूप से तीन कारक जिम्मेदार हैं। नंबर एक, वंशानुक्रम गुण हेरेडिटी एडोवेंट। नंबर दो, परिवार में बालक का प्रारंभिक अनुभव अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड विद इन द फैमिली। नंबर तीन, जीवन में बाद की घटनाएं इवेंट्स इन लेटर लाइफ। नंबर एक, वंशानुक्रम गुण हेरेडिटी एडोवेंट। वंशानुक्रम गुण बालक को अपने माता पिता से स्वाभाविक विरासत के रूप में मिलता है। बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता व्यक्तित्व निर्धारण का पहला महत्वपूर्ण आधार है, जिस पर बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व टिका रहता है। बालक अपने माता पिता से जो गुण लेकर इस सृष्टि में आता है, उसकी झलक उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है। पृष्ठ संख्या 279। नंबर दो, परिवार में बालक का प्रारंभिक अनुभव अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड विद इन द फैमिली। बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो कुछ भी अपने परिजनों से सीखता या देखता है, भले ही वे सुखद अनुभव हों या दुखद, वे केवल बालक के वर्तमान जीवन को ही नहीं प्रभावित करते, बल्कि उसके व्यक्तित्व पर जीवन भर के लिए अमिट छाप लगा देते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बाल्यकाल के प्रभावों एवं अनुभवों को वंशानुक्रम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह कदापि न भूलें कि व्यक्तित्व निर्माण में परिवारजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक माता के आंचल में लुक छिपकर बड़ा होता है और परिवार के सदस्यों से मूल्यों, परंपराओं, संस्कृतियों को सीखता है। इस दृष्टि से माता ही बालक की पहली शिक्षिका होती है और घर उसका विद्यालय तथा परिवार उसका परिवेश। बालक अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार से करते देखता है, उन्हें देखकर वह सीखता है। उसमें उसी प्रकार के लक्षण एवं बोलने चलने के ढंग विकसित हो जाते हैं, फलतः उसी प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ, यदि परिवार में बालक के पालन पोषण में समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, उसे छोटी छोटी गलतियों के लिए बुरी तरह से डांटा फटकारा जाता है, मारा पीटा जाता है, तो ऐसे बालकों का व्यक्तित्व सुंदर नहीं बन पाता है। कई बालकों में कई प्रकार के व्यवहारात्मक दोष बिहेवियर प्रॉब्लम उपज जाते हैं। उनमें हीन भावनाएं एवं कुंठा भर जाती है। उनके आत्मविश्वास में काफ़ी कमी आ जाती है। इतना ही नहीं, बालकों में मानसिक तनाव के कारण भावना ग्रंथियां पनप जाती हैं, जो जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहती हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि बालक को सुंदर परिवेश में पाला पोषा जाता है, वहां उसे सुंदर वातावरण मिलता है, परिवार के सदस्यों से भरपूर लाड प्यार मिलता है, तब वह समाज के साथ सुंदर ढंग से समायोजन बिठा लेता है और उसके व्यक्तित्व का उत्तम प्रकार से विकास होता है। नंबर तीन, जीवन के बाद की घटनाएं इवेंट्स इन लेटर लाइफ। जब बालक बड़ा होता है और घर से निकलकर बाहरी दुनिया एवं विद्यालय के प्रांगण में अपना कदम रखता है, तो उसे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होता है। विद्यालय में वह विभिन्न बालकों से मिलता जुलता है। वहाँ कुछ बालक उसे प्यार से बोलते हैं और अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो कुछ बालक उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं और डांट पटक कर मारपीट कर भगा देते हैं। इन अच्छी बुरी घटनाओं का बालक के कोमल तन मस्तिष्क पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। फलतः उसका व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। मान लीजिए किसी बालक को अपने माता पिता से लेकर परिवारजनों तक, पड़ोसियों एवं विद्यालय के शिक्षकों से अच्छा व्यवहार मिलता है तो उसे सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। समाज में भी उसकी पहचान हो, उसे मान सम्मान मिले तो निश्चित ही बालक के व्यक्तित्व का सुंदर ढंग से निर्माण एवं विकास होगा। परंतु यदि बालक को जन्म से लेकर आजीवन दुखद अनुभव ही रहे हों तो व्यक्तित्व विकास प्रभावित होगा और वह बालक कुंठा एवं हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 280, व्यक्तित्व के शील गुणों अथवा लक्षणों का विकास, डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। यद्यपि व्यक्तित्व के शील गुण वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं, परंतु इसके विकास में अधिगम एवं प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। बालक जन्म से ही शैतान, दुष्ट, बदमाश, कामचोर अथवा अच्छा, कोमल हृदय या मृदुभाषी नहीं होता है। वह इसे संसार में आकर भला बुरा, ईमानदार बेईमान, आलसी कर्तव्यनिष्ठ आदि बनना सीखता है। बालक के व्यवहार को प्रशिक्षण द्वारा पूरी तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। याद रहे, बालक अपने ही माता पिता का अनुकरण करता है। माता पिता जिस तरह से, जिस टोन में बोलते हैं, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बालक उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और फिर उसी प्रकार से बोलता है और उन्हीं का अनुकरण करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वह अपने शिक्षकों, मित्रों, पड़ोसियों आदि के संपर्क में आता है और फिर वह उन्हीं के चरित्रों, व्यवहारों एवं आचरणों का अनुकरण करता है। व्यक्तित्व के शील गुणों का अधिगम निम्न प्रकार से होता है। रोमन का एक, प्रयास एवं मूल विधि। नंबर दो, अनुबंधन विधि। नंबर तीन, अंतर्दृष्टि द्वारा। नंबर चार, अनुकरण द्वारा। इसके अतिरिक्त बालक चांस के द्वारा भी सीखते हैं। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक बालक का अपने साथियों के साथ झगड़ा हो जाता है और वह झगड़े में तेज बोलकर, क्रोधित होकर तथा आक्रामक रवैया अपनाकर अपने संगी साथियों से अपनी बात मनवा लेता है। संगी साथी बालक के गुस्सैल व्यवहार को देखकर उसकी बात को मान लेते हैं और उसे अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आत्मसंतुष्टि क्रोध अथवा आक्रामक व्यवहार के कारण होती है। अतः बालक जब कभी भी अपने संगी साथियों के बीच खेलेगा और अपनी बात मनवाना चाहेगा तो वह उसी प्रकार से आक्रामक व्यवहार, अग्रेसिव बिहेवियर को ही दोहराएगा। धीरे धीरे बालक का यह व्यवहार उसकी आदत बन जाएगी और उसके व्यक्तित्व के शील गुणों में समाहित हो जाएगा। फलतः वही बालक बड़ा होकर क्रोधी व्यक्ति, एग्रेसिव मैन कहलाएगा। ऐसे बालकों का या लोगों का सामाजिक समायोजन सुंदर नहीं होता है। बालक न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा आत्मसंतुष्ट के लिए ही व्यक्तित्वशील गुणों को विकसित करता है, वरन वह दूसरों से सम्मान पाने, प्रशंसा पाने एवं लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी इसका विकास करता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में एक बालक गणित के प्रश्नों को शीघ्रता से हल करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसके साथी एवं शिक्षक उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। फलतः बालक के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और बालक का यह गुण उसके व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है। अच्छे शील गुणों के कारण ऐसे बालक का उत्तम व्यक्तित्व विकास होता है। पृष्ठ संख्या 281, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अब वह यह समझने लगता है कि सभी लोग, माता पिता, शिक्षक, अभिभावक, परिवार के सदस्य, समाज के लोग, मित्रगण उसे समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। हर एक लोगों में देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ लोग उसे अच्छा, परोपकारी, अनुशासित बालक मानते हैं और उसके व्यक्तित्वशील गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो कुछ लोग उसे स्वार्थी, लालची, कामचोर कहकर उसकी आलोचना भी करते हैं। यह भी सत्य है कि बाल्यावस्था में बालक के जिन शील गुणों, व्यवहारों, कार्यों के लिए प्रशंसा की जाती थी, अब उन्हें कार्यों के लिए किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में प्रशंसा नहीं मिलती है। जैसे छोटा बालक जब कोई कहानी अथवा कविता याद करके सुनाता है और गृह कार्य को बड़े ही सावधानी पूर्वक सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर करता है तो माता पिता एवं शिक्षक उसके इस गुण को खुलकर प्रशंसा के रूप में करते हैं और उसे पुरस्कार देते हैं। परंतु किशोरावस्था में यह शील गुण कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि अब किशोर बालक के माता पिता एवं शिक्षक की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। बालकों में जैसे जैसे शील गुणों का विकास होता जाता है, वे समूहों के रूप में व्यक्ति के भीतर संग्रहित होते जाते हैं और सिंड्रोम का निर्माण करते हैं। उदाहरण, यदि किसी बालक को बाल्यावस्था से ही कठोर अनुशासन एवं प्रभुत्वशाली वातावरण में पालन पोषण किया जाता है, तब उसके व्यक्तित्व में भी कठोरता आ जाती है, क्योंकि उसके भीतर अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी सिंड्रोम प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व गुणों का विकास हो जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कठोर अनुशासन एवं प्रभुत्वशाली माता पिता के संरक्षण में पलने वाले बालक में दब्बूपन की भावना विकसित हो जाएगी। वह बालक अपने से बलवान एवं ताकतवर बालक से तो डरेगा, परंतु अपने ही कमजोर बालक को डराएगा, उसे दबाएगा, प्रताड़ित करेगा, क्योंकि ऐसे बालकों के व्यक्तित्व में चिंता, ईर्ष्या, असुरक्षा, अनिश्चितता आदि नकारात्मक गुणों का संग्रह हो जाएगा। फलतः बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाएगा और उसका सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाएगा। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख शील गुण, सम इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। व्यक्तित्व के प्रमुख शील गुण निम्न प्रकार से माने जाते हैं। नंबर 1, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी व्यक्तित्व का प्रमुख शील गुण है। यह श्रेष्ठ व्यक्ति का परिचायक है। ईमानदार लोगों की कद्र हर जगह, हर युग, हर काल में की जाती है। ईमानदार लोगों पर समाज के लोगों का विकास होता है और विश्वास होता है। उसकी एक आवाज़ पर लोग अपनी जान छिड़कने को तैयार रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति कभी दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करते। वह कठिन से कठिन व विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी के इस गुण से मुंह नहीं मोड़ता है और सत्य हरिश्चंद्र की भांति अडिग एवं अटल होकर उन्हें झेलता रहता है। अतः ईमानदार व्यक्ति की पूजा हर जगह की जाती है। नंबर 2, संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। संवेगात्मक स्थिरता से तात्पर्य संवेगात्मक परिपक्वता से है। वे व्यक्ति जो शीघ्र ही संवेगों का शिकार नहीं होते हैं, वे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। उनका चित्त स्थिर होता है, अतः वे हर बात को काफी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर ही किसी कार्य को करते हैं। वे छोटी छोटी बातों से कदापि उत्तेजित नहीं होते हैं। फलतः उनकी निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर उत्कृष्ट होती है। पृष्ठ संख्या 282, उदासी एवं प्रफुल्लता, डिप्रेशन एंड इलेक्शन। उदासी एवं प्रफुल्लता एक दूसरे के विपरीत गुण है। उदासी शील गुण जिन लोगों के व्यक्तित्व में होता है, वे सदैव ही चिंतित, दुखी, खिन्न, उदास, निराश दिखाई देते हैं। उनके होठों से हंसी कोसों दूर तक रहती है। उनके चेहरे पर सदैव ही उदासी एवं नैराश्य का साया मंडराता रहता है। वे अपने में भी कभी खुशी का अनुभव नहीं करते हैं। वे हमेशा अपनी असफलताओं को याद करके रोते हैं और लोगों के प्रति भी नकारात्मक विचार रखते हैं। दूसरी ओर प्रफुल्लता, इलेशन, व्यक्तित्व का धनात्मक शील गुण है। प्रफुल्लित व्यक्ति हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। उसके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण होता है। वे दुखों की कदापि परवाह नहीं करते हुए सदैव प्रसन्नचित एवं आनंदित दिखाई देते हैं। उनके होठों से हंसी के फव्वारे फूटते रहते हैं। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में आशान्वित दिखाई देते हैं और कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हैं। उनके मन में विश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है, ईश्वर के प्रति आस्था होती है। वे ये सोचकर आनंदित रहते हैं कि विपत्तियों से कदापि नहीं घबराते। वे दूसरों के लिए प्रकाश पुंज की भांति कार्य करते हैं। उनके मन में सदैव यह बात रहती है कि किंतु भी जो इसके पीछे एक पुरुष है न्यायी, आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो भाई। नंबर 4, धुन अथवा लगन का पक्का होना। व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण शील गुण है धुन अर्थात लगन का पक्का होना। यह शील गुण व्यक्ति को सफलता प्राप्त कराने में काफी मददगार होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, जिसमें काम करने का धुन सवार है, जिसमें कार्य के प्रति लगाव है वह अपनी मंजिल पा लेता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य नहीं छोड़ता है और उसे पूरा करता ही रहता है। उसकी आंखों के सामने केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे कुंती पुत्र अर्जुन को केवल मछली की आँख ही दिखाई देती थी और केवल अर्जुन ही मछली की आँख में तीर भेज सका था। शेष सभी कौरव पांडव उसे भेदने से वंचित रह गए थे। इसका प्रमुख कारण था कि उन्हें लक्ष्य तो दिखाई नहीं देता था, परंतु लक्ष्य के इर्द गिर्द की चीजें ही दिखाई देती थी। इसी प्रकार जो व्यक्ति लगनशील होता है, धुन का पक्का होता है, वह अंततः अपनी मंजिल पा ही लेता है तथा अपनी विजय पताका संपूर्ण संसार में फहरा देता है। परंतु यदि व्यक्ति में धुन नहीं है, कार्य के प्रति दृढ़ता नहीं है, वह कष्टों को सहन नहीं कर पाता और कार्य को बीच में ही छोड़ देता है, तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और विजयश्री उसके पास से कोसों दूर चली जाती है। अंततः ऐसा व्यक्ति निराशा का ही शिकार हो जाता है। अतः अस्पष्ट है कि धुन व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण शील गुण है। प्रश्न संख्या 283, नंबर 5, प्राबल्य एवं अधीनता, एक्सेप्टेंस एंड सबमिशन। प्राबल्य एवं अधीनता एक दूसरे के विपरीत हैं। प्राबल्य के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों की प्रधानता आती है। इस शील गुण से बालक में आत्मविश्वास, चेतना एवं जागरूकता पनपती है। वह दृढ़ निश्चयी बनता है। सहयोग, परोपकार, त्याग, बलिदान, सहिष्णुता, स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा आदि गुण उसमें स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। जिन लोगों के व्यक्तित्व में ये शील गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, उनका सामाजिक समायोजन बेहतर होता है। अधीनता सबमिशन व्यक्तित्व के नकारात्मक शील गुण है जो परावलंबन को जन्म देता है। अधीनता से युक्त शील गुणों वाला बालक हीनता एवं कुंठा का शिकार होता है। उसमें अनिश्चितता व असुरक्षा की भावना भर जाती है। उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। परमपिता परमेश्वर की इस धरा पर प्रत्येक प्राणी विविध समानताएं रखते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता रखता है। यही स्थिति मनुष्य जाति की भी है कि समरूपताओं के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से काफी भिन्न है, अथवा यो कहें कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिमान बेजोड़ अभूतपूर्व होता है। कारण है प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व शील गुणों का भिन्न भिन्न तरीके से संयुक्तिकरण होना। शील गुणों के भिन्न भिन्न संयुक्तिकरण के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए व्यक्तित्व भी भिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। जैसे नंबर 1, सामान्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन फ्रॉम कॉमन व्यू। सामान्य विचारधारा के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, राजसी, जिनका रहन सहन, ठाट बाट, खान पान का ढंग, बोल चाल में राजाओं सा गुड़ झलकता है। जो युद्ध प्रेमी, वीर व पराक्रमी योद्धा हो, उसका व्यक्तित्व राजसी कहलाता है। नंबर 2, सात्विक, वह व्यक्ति जिसका झुकाव धर्म की ओर हो, जो नित्य प्रति पूजा पाठ करता हो, आध्यात्म में लीन हो, भजन कीर्तन प्रवचन में भाग लेता हो, जिसके आहार शुद्ध सात्विक हो, जो मांस मछली मदिरा आदि का सेवन नहीं करता हो, साधारण पौष्टिक भोजन खाकर संतुष्ट रहता हो, उसका व्यक्तित्व सात्विक कहलाता है। नंबर 3, तामसिक, वह व्यक्ति जो बात बात पर क्रोधित होता हो, धर्म को ना मानता हो, गलत कार्य व्यवहार व आचरण करता हो, दूसरों को सताता हो, दूसरों के अधिकारों का हनन करता हो, आलसी व कमजोर हो, कामचोर हो, मिर्च मसालेदार गरिष्ठ भोजन करता हो, भोजन में मांस मरीदार का सेवन करता हो, वेश्यावृत्ति में लिप्त हो, उसका व्यक्तित्व तामसिक प्रवृत्ति का होता है। पृष्ठ संख्या 284, नंबर 2, आयुर्वेद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अनुसार भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्य 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, कफ प्रधान, जो व्यक्ति मोटा, शांत एवं कम क्रियाशील हो, वे कफ प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। नंबर 2, पित्त प्रधान, जो व्यक्ति सदैव ही क्रियाशील रहते हैं, उद्यमी रहते हैं, अपने कार्य के पूर्ण निष्ठा एवं लगन से पूरा करते हैं, हमेशा लक्ष्य पाने की ओर प्रेरित रहते हैं, वे पित्त प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। नंबर 3, वात प्रधान, जो ना तो अधिक मोटे ना दुबले बल्कि बीच बीच में होते हैं, जिनके स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहता है, जो अक्सर बीमार रहते हैं, वो वात प्रधान व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल व्यू। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, विचार प्रधान, जो व्यक्ति सदैव चिंतन में लगे रहते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, जिनके अंतर्मन में काम करने की धुन समाई रहती है, जो शोध कार्यों में जुटे रहते हैं, वे विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसे वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता, प्रशासक, दार्शनिक आदि, इन लोगों के विचारों की प्रबलता पाई जाती है। नंबर 2, भाव प्रधान, जिन व्यक्तियों में संवेगों, भावों एवं मूल प्रवृत्तियों की अधिकता होती है, वे चिड़चिड़े एवं अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं, वे अक्सर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अतः इन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 3, क्रिया प्रधान, वे व्यक्ति जो उद्यमी होते हैं, अपने कार्यों को बेहतर व श्रेष्ठ परिणाम देने में लगे रहते हैं, वे क्रिया प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। कर्मशील, कर्मठ व्यक्तित्व किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तथा इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, श्रमिक नेता आदि। नंबर 4, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स। रोमन का 1, स्प्रेंगर का वर्गीकरण, स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण व्यक्ति के कार्यों, व्यवहारों व मूल्यों के आधार पर किया है। नंबर 1, सामाजिक, सोशल, वैसे व्यक्ति जिनमें समाज के लोगों के साथ मिलने जुलने, उठने बैठने, संपर्क बढ़ाने एवं सुंदर ढंग से सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, वे सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है, वे समाज के हित में कार्य करते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तथा समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वे आगे चलकर सामाजिक कार्यकर्ता व समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर बनते हैं। नंबर 2, कलात्मक अथवा सौंदर्यात्मक, सौंदर्य बोध रखने वाले सभी व्यक्ति इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनका झुकाव सुंदर वस्तुओं, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सबसे ज्यादा होता है, जैसे संगीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कलाकार, कवि आदि। नंबर 3, धार्मिक, रिलीजियस, जिन लोगों को धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है, जो नित्य प्रति पूजा पाठ, ध्यान, ईश्वर आराधना में लिप्त रहते हैं, जो अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखते हैं, वे धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। आगे चलकर ऐसे व्यक्ति पुजारी, पादरी, संत, महात्मा, मौलवी आदि बनते हैं। नंबर 4, राजनैतिक, पॉलिटिकल, वे लोग जिनकी रुचि राजनीति में रहती है और जो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वे राजनीतिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, जैसे राजनीतिज्ञ, नेता आदि। नंबर 5, आर्थिक, इकोनॉमिकल, इस श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनका तन मन धन कमाने में लगा रहता है। इनके लिए धन ही सब कुछ होता है, ये सारे नाते रिश्तेदारों को भूलकर धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। किसी भी तरीके से धन कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है, जैसे दुकानदार, व्यापारी, उद्योगपति आदि। नंबर 6, वैचारिक, थ्योरेटिकल, ऐसे लोग बुद्धिमान एवं ज्ञानवान होते हैं। इनमें ज्ञान अर्जित करने की असीम ललक होती है, वे सोते जागते, उठते बैठते, चैतन्य अचैतन्य, हर दशाओं में चिंतन करते रहते हैं और अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। दूसरे लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इनकी इन्हें जरा भी परवाह नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति वैचारिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जो आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषक, खोजी आदि बनते हैं। रोमन का 2, C.S. जुंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू C.S. जुंग, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, सी एस जुंग का व्यक्तित्व का वर्गीकरण सभी वर्गीकरणों में श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने मानव प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न तीन प्रकारों से किया है। रोमन का एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले वे लोग होते हैं जो अपनी जीवन शक्ति को अपने ही भीतर संचित करके रखते हैं। ये आत्म केंद्रित एवं एकांत प्रिय होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ सेंटर्ड चिल्ड्रन ऑलवेज पोसेस्ड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालकों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर एक, ये कम बोलने वाले, एकांत प्रिय एवं लज्जाशील होते हैं। नंबर दो, इनमें व्यवहारिकता का अभाव होता है, इसलिए ये कम लोकप्रिय होते हैं। नंबर तीन, ये भीड़ भाड़ से घबराते हैं और लोगों की दृष्टि से दूर रहना चाहते हैं। नंबर चार, ये व्यवहार कुशल नहीं होते, ये काम की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देते हैं। नंबर पाँच, इन्हें हंसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पृष्ठ संख्या 286। नंबर छः, ये असामाजिक होते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं होता है। नंबर सात, इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुख व्यक्तित्व वाले से अधिक होती है। नंबर आठ, ये सीधे साधे शांत स्वभाव वाले तथा छल कपट से दूर रहने वाले होते हैं। नंबर नौ, पढ़ाई में ऐसे बालकों की रुचि अधिक रहती है, ये खेलों में कम ही भाग लेते हैं। नंबर दस, ये लगनशील होते हैं, दूसरों की परवाह किए बगैर ये दिन रात अपने कार्य में जुटे रहते हैं। नंबर 11, इनमें विचारों को बोलकर प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु ये विचारशील होते हैं और चिंतन में लगे रहते हैं। ये अपने विचारों में ही खोए रहते हैं और दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। नंबर 12, ये दार्शनिक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, कवि, लेखक होते हैं। नंबर 13, ये कठिन परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाते हैं। नंबर 14, ये आदर्शवादी होते हैं और भविष्य के विषय में अधिक सोचते हैं। नंबर 15, इनमें शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती और ना ही वे लिए गए निर्णय पर शीघ्रता से अमल ही करते हैं। नंबर 16, इसमें असुरक्षा की भावना अधिक होती है, फलतः ये चिंतित रहते हैं। नंबर दो, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग अपनी जीवन शक्ति का संचार बाह्य की ओर करते हैं। ये यथार्थवादी होते हैं और परिस्थितियों का वस्तुगत रूप से सामना करते हैं। ये मिलनसार होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर एक, ये समाज केंद्रित होते हैं, इन्हें दूसरों से मिलना जुलना, उठना बैठना, संपर्क स्थापित करना अच्छा लगता है। नंबर दो, ये लोकप्रिय, जनप्रिय एवं व्यवहार कुशल होते हैं। नंबर तीन, इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है, ये अधिकांश समय अपने संगी साथियों एवं समाज के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। नंबर चार, इनमें वाक चातुर्य पाया जाता है, ये अपनी वाणी से दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित कर लेते हैं। नंबर पाँच, ये चंचल स्वभाव वाले एवं बातूनी होते हैं, ये अपने विचारों को शीघ्र ही दूसरों के समक्ष प्रकट कर देते हैं। नंबर छह, ये व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं, नैतिक आदर्शों के चक्कर में बहुत अधिक नहीं पड़ते। नंबर सात, ये कठिनाइयों अथवा मुश्किलों से जल्दी नहीं घबराते हैं। नंबर आठ, नवीन परिस्थितियों में शीघ्रता से समायोजन कर लेते हैं। नंबर नौ, इनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, इनमें धनात्मक आत्म प्रत्यय पाया जाता है। नंबर दस, इसमें क्रियाशीलता की भावना अधिक होती है, अतः ये कर्मशील व्यक्ति होते हैं। नंबर 11, इनके निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है और उस पर ये अमल भी करते हैं। नंबर 12, ये वर्तमान की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जीवन को सुख एवं आनंद पूर्वक जीना इन्हें ज्यादा पसंद है। नंबर 13, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले को अपनी प्रशंसा सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 14, ये सफल व्यवसायी, खिलाड़ी, वक्ता, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, वकील और समाज सुधारक बन जाते हैं। पृष्ठ संख्या 287। नंबर तीन, उभयमुखी, एम्बीवर्ट। वे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, वे उभयमुखी कहलाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तो सोने पर सुहागा जैसा कहावत को चरितार्थ करता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर एक, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं। नंबर दो, ये सभ्य एवं व्यवहार कुशल होते हैं तथा दूसरों के मनोभावों को जल्दी ही पहचान जाते हैं। नंबर तीन, इनकी तर्क क्षमता अधिक होती है, ये काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। नंबर चार, इनमें कर्मठता एवं विचारशील दोनों ही गुण पाए जाते हैं। नंबर पाँच, इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होता है। नंबर छह, समाज में इनकी लोकप्रियता बनी रहती है। रोमन का तीन, शेल्डन के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेल्डन। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण व्यक्ति के स्वभाव एवं शरीर रचना के आधार पर दो प्रकार से किया है। रोमन का एक, शारीरिक रचना के आधार पर। रोमन का दो, स्वभाव के आधार पर। रोमन का एक, शारीरिक रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक, ए एंडोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति छोटे कद के एवं मोटे होते हैं। इनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा की अधिकता होती है। इनका शरीर कोमल होता है, पेट एवं नितंब बड़ा होता है, पाचन अंग अधिक विकसित होता है, इनका व्यक्तित्व सरल होता है। बी मेसोमॉर्फिक, इनका शारीरिक गठन उत्तम प्रकार का होता है, ये हृष्ट पुष्ट होते हैं, इनकी हड्डियाँ एवं मांसपेशियाँ अधिक विकसित होती हैं, इनका शरीर गठीला एवं मजबूत होता है, इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। सी एक्स्ट्रोमॉर्फिक, वे व्यक्ति दुबले पतले एवं कमजोर होते हैं, इनकी मांसपेशियाँ लंबी पतली एवं शक्तिहीन होती हैं, इनके शरीर में वसा तथा मांसपेशियों का सही अनुपात नहीं रहता है, इनका व्यक्तित्व आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्ति का होता है। पृष्ठ संख्या 288, नंबर दो, स्वभाव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। स्वभाव के आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व को निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया है। रोमन एक, सोमेटोटोनिक, वे व्यक्ति जो जोर से बोलने वाले, साहसी, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, अस्पष्टवादी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं अधिकार प्रिय होते हैं। रोमन का दो, सेरेब्रोटोनिक, वे व्यक्ति संयमी, धीरे बोलने वाले, एकांत प्रिय और संवेदनशील होते हैं, ये संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। रोमन का तीन, विसेरोटोनिक, वे व्यक्ति आराम फरमाने वाले, प्यार की अभिलाषा रखने वाले व स्वादिष्ट एवं मधुर भोजन पसंद करने वाले होते हैं। रोमन का चार, क्रैशमर के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्रैशमर। क्रैशमर ने भी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न चार प्रकार से किया है। रोमन का एक, गोलमटोल, वह व्यक्ति मोटे, आराम पसंद एवं छोटे कद वाले होते हैं, ये मिलनसार एवं सामाजिक होते हैं, इनका स्वभाव मृदुल होता है, ये सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना जुलना एवं मित्रता करना इन्हें पसंद होता है। रोमन का दो, सुडौल, ऐसे व्यक्तियों का शरीर गठीला, हृष्ट पुष्ट एवं सुगठित होता है, ये शक्तिशाली होते हैं, इनके कंधे चौड़े, वक्ष विस्तृत एवं सीना तना हुआ होता है, ये व्यवहार कुशल, चुस्त एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। रोमन का तीन, दुबले पतले, वे व्यक्ति शर्मिले एवं अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, इनका शरीर दुबला पतला होता है, इनके कंधे संकरे, वक्ष संकरा, मांसपेशियाँ अविकसित एवं अस्थियां कोमल होती हैं, ये भाविक एवं एकांत प्रिय होते हैं। रोमन का चार, विशिष्ट शारीरिक गठन वाले, स्पेसिफिक फिजिक डायस्प्लास्टिक, जिन लोगों में उपरोक्त तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं वे विशिष्ट शारीरिक गठन वाले होते हैं। रोमन का नंबर पांच, डब्ल्यू वी कैनन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू वी कैनन। कैनन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पर किया है। हम सभी को ज्ञात है कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिससे हार्मोन निकलता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। व्यक्ति में जिस अंतःस्रावी ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक होती है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को अग्रवर्गों में बांटा गया है। नंबर एक, सहनशीलता, पिट्यूटरी, जब व्यक्ति के शरीर में पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथ की क्रियाशीलता अधिक होती है तो वह सहनशील प्रवृत्ति वाला बनता है। वह संवेगात्मक रूप से स्थिर चित्त वाला होता है। उसका स्वभाव शांत होता है। वह हंसमुख एवं मिलनसार होता है, आत्मविश्वासी होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दूसरों की बातों को आसानी से मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 289, नंबर 2, प्रभावक। जिन लोगों के शरीर में थायराइड ग्रंथ की क्रियाशीलता अधिक होती है, वे प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अपनी बातों, विचारों एवं तर्क शक्ति से शीघ्र ही दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। नंबर 3, कुटिल। जिन लोगों में पैराथायराइड की क्रियाशीलता अधिक रहती है, वे कुटिल स्वभाव वाले होते हैं। वे शीघ्र उत्तेजित होते हैं। ऐसे लोग ईर्ष्यालु एवं लड़ाकू प्रवृत्ति वाले होते हैं। नंबर 4, शिथिल। जिन लोगों में थायराइड ग्रंथ की क्रियाशीलता कम होती है, वे आलसी, सुस्त एवं कामचोर होते हैं। उनका शरीर थका हुआ एवं मन उदास व खिन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि वाले होते हैं। नंबर 5, पूर्व परिपक्व। जब किसी व्यक्ति में एड्रिनल ग्रंथ की क्रियाशीलता समय से पूर्व हो जाती है, तो वह व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से जल्दी ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। नंबर 6, सांस्कृतिक। जब गोनेड ग्रंथ की क्रियाशीलता कम होती है, तो व्यक्ति सांस्कृतिक व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव वाले होते हैं। साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति इनकी रुचि रहती है। नंबर 7, लड़ाकू। ये व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये क्षणिक संवेग वाले होते हैं। इनमें सांवेगिक अस्थिरता बहुत अधिक होती है। रोमन का 6 है, आरबी कैटल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू आरबी कैटल, आरबी कैटल ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्य 2 रूपों में किया है। नंबर 1, लहरी सर्जेंट। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति चंचल, हंसमुख, मिलनसार, विनोद प्रिय होते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभुत्वशाली होता है। ये अवसरवादी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। दिखावटीपन इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 2, अलहरी। ऐसे व्यक्ति संकोचित स्वभाव वाले, एकांत प्रिय एवं भीड़ भाड़ से दूर रहने वाले होते हैं। इन्हें हंसी मजाक जरा भी पसंद नहीं होता। ये सीधे साधे एवं शांत प्रिय होते हैं। कृत्रिमता एवं बनावटीपन इन्हें जरा भी पसंद नहीं होता। ये अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं। रोमन का 7, मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड गिलीलैंड, संवेगात्मक व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्य 4 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, प्रफुल्ल, हैप्पी। ये व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये मृदुल एवं हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनका हृदय उदार एवं विशाल होता है। ये आशावादी एवं जीवन के प्रति सकारात्मक सोच वाले होते हैं। इनके जीवन में भले ही विकट से विकट मुसीबतें आ जाएं, मगर ये जल्दी घबराते नहीं हैं। पृष्ठ संख्या 290, नंबर 2, उदास, सैडनेस। ऐसे व्यक्ति सदैव उदास, निराश, दुखी एवं खिन्न रहते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। ये निराशावादी एवं उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 3, अस्थिर, अनस्टेबल। वैसे लोग जो शीघ्रता से संवेगों के शिकार बन जाते हैं, वे अस्थिर चित्त वाले होते हैं। इनमें मुसीबतों को झेलने की क्षमता बहुत ही कम होती है। वे अधीर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें निर्णय लेने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। नंबर 4, चिड़चिड़े, इरिटेबल। ये गर्म मिजाज वाले, दूसरों में अक्सर दोष निकालने वाले व शीघ्र नाराज होने वाले होते हैं। इनमें सांवेगिक अस्थिरता बहुत अधिक होती है। इनका स्वभाव लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है। रोमन का 8, थार्नडाइक के अनुसार। अकॉर्डिंग टू थार्नडाइक, थार्नडाइक ने व्यक्ति के विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण मुख्य 4 वर्गों में किया है। नंबर 1, इंद्रिय विचारक। वे व्यक्ति जो सोचने, समझने, चिंतन करने, विचार करने, तर्क करने में अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, वे इंद्रिय विचारक कहलाते हैं। गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े आदि इसी श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, सूक्ष्म विचारक। जिन लोगों में गहन अध्ययन व चिंतन की क्षमता होती है, वे किसी की बात को गहराई तक जानना चाहते हैं, सूक्ष्म विचारक कहलाते हैं, जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, अन्वेषक आदि। नंबर 3, स्थूल विचारक। जिनमें सूक्ष्म चिंतन का अभाव होता है, जो केवल सतही ज्ञान रखते हैं और कुछ विशिष्ट जानकारी के आधार पर ही कार्यों को संपन्न करते हैं, तथा अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं, वे स्थूल विचारक होते हैं। नंबर चार, प्रत्यय विचारक, वे लोग जो संकेतों एवं चिन्हों के आधार पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं, प्रत्यय विचारक कहलाते हैं। भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, गणितज्ञ आदि इसी श्रेणी में आते हैं। व्यक्तित्व में वैयक्तिकता, विधाता की इस सुंदर श्रेणी में हर एक प्रकार में अनोखापन पाया जाता है। उनमें समानताएं होने के बावजूद भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रतिमान बेजोड़ होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व शील गुणों का संगठन संयुक्तिकरण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। व्यक्तित्वशील गुणों की भिन्न संयुक्तिकरण ही व्यक्तित्व प्रतिमान को बेजोड़ बनाता है। परिणाम स्वरूप हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। आल्टपोर्ट ने वैयक्तिकता के संबंध में लिखा भी है, इंडिविजुअलिटी इज अ नेवर रिपीटेड फिनोमिना, तथा इस पर जोर देते हुए कहा है कि आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इज हिज इंडिविजुअलिटी। पृष्ठ संख्या 291। सारांश में कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व प्रतिमान के अंतर से तात्पर्य न केवल व्यक्तित्व केंद्र से भिन्नता से है, बल्कि व्यक्तित्वशील गुणों में अंतर से भी है। अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि कुछ सामान्य व्यक्तित्वशील गुण ऐसे होते हैं जो समाज के अधिकांश लोगों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य ही पाए जाते हैं, जैसे ईमानदारी, सामाजिकता, उदारता, सत्यता, सहयोग, मित्रता, सहनशील आदि। परंतु कुछ विशिष्ट गुण वाले कुछ व्यक्ति में पाए जाते हैं और वही गुण उनके व्यक्तित्व को बेजोड़ अथवा विलक्षण बनाते हैं। अधिकांश लोगों में सामान्य शील गुण होने का प्रमुख कारण वातावरणीय प्रभाव होता है। जब बालक विद्यालय जाने लगते हैं तो उन्हें विद्यालय में सत्यता, ईमानदारी, सहयोग, सहिष्णुता, कर्मठता, सहनशील आदि सद्गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। फलतः समूह के अधिकांश लोगों में यह शील गुण स्वतः ही समाहित हो जाता है। परंतु कुछ विशिष्ट शील गुणों के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करने पड़ते हैं, साथ ही समुचित सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वंशानुक्रम गुणों का संयुक्तिकरण भी अनोखे ढंग से होता है। जहां तक सामान्य व्यक्तित्वशील गुणों का प्रश्न है, इनमें भी अनोखापन पाई जाती है। फलतः किसी भी दो व्यक्तियों में व्यक्तित्वशील गुण ना तो समान मात्रा में पाया जाता है और न ही इनकी तीव्रता ही एक जैसी होती है, भले ही वे दोनों व्यक्ति एक ही माँ बाप के संतान हों। उदाहरण के लिए, ईमानदारी एक ऐसा शील गुण है जो समाज के अधिकांश लोगों में पाया जाता है, परंतु किसी भी दो व्यक्ति में ईमानदारी की मात्रा की डिग्री एवं तीव्रता में समानता नहीं होती है। एक व्यक्ति जहाँ सत्य हरिश्चंद्र की भांति ईमानदार के पक्ष में अटल व अडिग रहता है, भले ही इस चक्कर में उसका सर्वस्व क्यों ना नाश हो जाए, परंतु वह यही राग अलापता रहता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस उक्ति का पालन करते वाले व्यक्ति ईमानदारी एवं सत्यता की चरम सीमा पर होता है। जो सत्य एवं ईमानदारी के लिए अपनी जान पर न्यौछावर कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति ईमानदार तो है, मगर उसकी ईमानदारी की पराकाष्ठा इतनी अधिक नहीं होती है। वह समय, परिस्थिति एवं मौका देखकर ईमानदारी की मात्रता एवं तीव्रता में थोड़ा बहुत हेर फेर कर लेते हैं। वे संतुलित जीवन जीते हैं, फलतः उनका जीवन अधिक सुखद एवं आनंदित रहता है। ठीक उसी प्रकार किन्हीं भी दो व्यक्तियों में गुस्सा करने का ढंग भी एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग अधिक गुस्सैल होते हैं तो कुछ कम। कुछ लोग क्रोध आने पर अशोभनीय अथवा अवांछनीय कार्य कर बैठते हैं तो कुछ क्रोध को पी जाते हैं।